بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، خیر ناصر ومعین. شروع کرتی ہوں اس خدائے رحمان کے نام سے جو خود نور ہے، جس کا کلام نور ہے، خود خالق نور ہے، اور جس نے نوراری ہستیوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں خوش قسمت گرانہ، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ خیر النساء. آپ کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کرتی ہوں اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں خوش قسمت گھرانہ میں. ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر نئے مہمانوں کے ساتھ، ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
الحمدللہ،
خیریت سے ہیں. آپ اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم عرض کرتے ہیں. آپ کا تعارف آپ کی زبانی سننا پسند کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. سید احتشام رضا، میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، اس میں اتر پردیش شہر مراد آباد سرسی میرا جائے پیدائش ہے. والد محترم کی یہ خواہش تھی کہ دوسرے بڑے بھائی مولانا جمال عباس صاحب کی طرح میں بھی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تنظیم المکاتب جیسے ادارے میں تعلیم حاصل کروں، لہذا 9 سال کی عمر میں آپ نے مجھے لکھنؤ بھیج دیا. وہاں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، جبکہ سرسی میں 8ویں پاس جس کر چکا تھا. وہاں پر جانے کے بعد تقریباً میں نے معلم کلاس تک تنظیم المکاتب میں تعلیم حاصل کی. پھر جب ایرانی ہیئت وہاں پر جاتی ہے تو مجھے تمام طلبہ میں تیسرے نمبر پر منتخب کر کے وہ قم لے کر آتے ہیں، اور الحمدللہ ایرانی سال کے حساب سے 1361 یعنی
51
شمسی حساب سے جو یہ لوگ کہتے ہیں 81ویں سال سے میں یہاں پر ہوں، اور تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں کہ جامعۃ المصطفیٰ کے زیر نگرانی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور اس وقت مدرسہ تخصص فقہ میں، فقہ اقتصاد میں. شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلا طالب علم تھا کہ اس وقت لڑکے اقتصاد میں نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ یہ ایک شعبہ، سخت شعبہ ہے، وہاں پر کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. لہذا میں نے پہلے طالب علم ہونے کے عنوان سے شعبہ فقہ اقتصاد کو منتخب کیا، اور اسی میں کارشناسی ارشد تقریباً پورا ہو چکا ہے اور اب پایہ نامہ لکھ رہا ہوں.
جی بابی، آپ کا اپنا تعارف آپ کی زبانی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شبانہ پروین ہے، انڈیا سے تعلق رکھتی ہوں. انڈیا میں 11ویں پاس کرنے کے بعد میں لکھنؤ جامعۃ الزہرا میں 5 سال پاس کیا، اور وہاں کے 5 سال پاس کرنے کے بعد ایرانی اگزام میں قبول ہوئی، اور 5 سال تقریباً یہاں پر ہو گئے، یعنی تقریباً 10 سال یہاں پر مجھے ہو گئے، اور خدا کے شکر سے کارشناسی تمام ہو گیا. کارشناسی ارشد کے آزمون میں شرکت کی، انشاءاللہ کہ خداوند قبول کرے
انشاءاللہ. مولانا صاحب، آپ کی اور دوسری ایکٹیویٹیز اگر آپ بتانا پسند کریں.
جی، اس کے علاوہ میں شروع ہی سے الحمدللہ، چونکہ بھائی صاحب کے زیادہ ہاتھ میری تربیت اور تعلیم میں رہا ہے، تو ان کے ساتھ ساتھ میں بھی ان کی تحقیقات میں اور ترجموں میں ہمیشہ شریک رہا ہوں، اور وہ مجھے یہ ان کی بزرگی ہے کہ مجھے انہوں نے ہمیشہ شریک رکھا ہے اپنے کاموں میں، اور ان کی جتنی بھی کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں اس میں میں ان کا دائیں ہاتھ بن کر رہا ہوں، اور بہت سے مقالے میں نے ترجمہ کیے ہیں، خود فارسی سے بھی، اور بعض مقالے عربی سے اردو میں ترجمے کیے ہیں. اور اس وقت میں زہرا اکیڈمی، جو کہ پاکستان کی زہرا اکیڈمی ہے، اسی کے ماتحت مسئول معاون آموزش کی حیثیت سے بھی اس میں ہوں، اور ایک محقق کے عنوان سے بھی اس میں کام کرتا رہتا ہوں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی تعلیم سے متعلق جو جو کام ہو سکتے ہیں، چاہے وہ تحقیقات ہوں یا تالیفات ہوں یا تراجم ہوں، تمام کاموں میں کہیں نہ کہیں شریک رہتا ہوں. حتیٰ میں نے بعض طلبہ جو ترجمہ کرتے ہیں مثلا کتابوں کا، اور ضرورت محسوس کرتے ہیں میری، اور بغیر کسی رسمی اعتبار سے میں ان کی تصحیح ہے ان کی کتابوں کا، یا ان کی کتابوں کو دیکھنا ہوتا ہے، تو میں یہ سب کام کرتا رہتا ہوں.
چلیں شبانہ، آپ کے گھر اجازت ہو تو آپ کے گھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں چھوٹا سا ویڈیو کلپ. جی ہاں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور یہ پروگرام इनमें इन फैमिली के साथ मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। चल के देखते हैं एक छोटा सा वीडियो के लिए, फिर वापस आते हैं। मौलाना साहब, मैंने आपको किचन में भी देखा कि इतनी सारी मसरूफियात भी हैं, अच्छा लगता है किचन में जाना, हेल्प करना। और इस्लाम क्या कहता है कि वाकई में घर में हेल्प करनी चाहिए या नहीं बीवी के साथ इस तरह?
बहरहाल एक यूँ करके कहा जा सकता है कि घर एक खुद ही दुनिया है। इस दुनिया को चलाने के लिए सब आपस में मिलकर इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगी, यानी एक दिन जन्नत हो जाएगी। और अगर सब एक दूसरे से दूर होने लगेंगे तो सिर्फ जन्नत ही नहीं बल्कि शायद जहन्नम में तब्दील हो जाए। तो तमाम मसरूफियात के बावजूद जब भी घर आता हूँ और एहसास करता हूँ कि मेरी ज़रूरत है इनको, चाहे बच्चे को गोद में लेना हो या खाना पकाना हो, हत्ता बर्तन भी धोना हो, और ये एहसास करता हूँ कि चूँकि ये भी एक तालिबे इल्म है और मैंने इसीलिए इंतखाब किया है कि चूँकि एक तालिबा तालिबे इल्म की ज़रूरियात को बेहतर तरह से समझ सकती है और ये भी मदद करती है मेरी, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सकता है, ठीक है मैं भी पढ़ के आ रहा हूँ लेकिन ये भी तो पढ़ के आती हैं, ये भी तो एक हक़ रखती हैं, तो जहाँ भी एहसास करता हूँ मैं इनकी मदद कर देता हूँ। बाज़ वक्त अगर मैं समझ भी नहीं पाता तो ये मुझे बुला लेती हैं, कोई मुझे इसमें शर्म का एहसास नहीं होती कि फ़लाँ काम करने में मुझे शर्म आए, नहीं कोई ऐसी शर्म की बात नहीं।
अच्छा शबाना, मैं यहाँ कहूँगी कि बहुत खुशकिस्मत हो कि इतना अच्छा शोहर तुम्हें मिला है कि जिसकी वजह से यूँ असल तुम्हारे नफ़क़त यानी मानवी लिहाज से बल्कि दुनियावी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं ये। अच्छा, और कभी इनके आने पर ये तो नहीं होता कि भाई ऐसा ना हो कि इनके घर वालों को पता चल जाए कि ये मेरे साथ घर में हेल्प वगैरह करते हैं? क्योंकि हमारे माशरे में अक्सर ये चीज़ है नहीं, रिवाज बहुत ज़्यादा, तो अच्छा लगता है आना, इनका काम करना, हेल्प करना? या फिर
नहीं, वैसे मैं खुद ज़्यादा इनसे हेल्प नहीं लेती, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है, मसलन मेहमान वगैरह आ जाएँ तो काम ज़्यादा होते हैं, मसलन ज़्यादा नहीं तो बच्चे को संभालना।
अच्छा, इतने अच्छे शोहर को खुद से चुना था, अपनी मर्ज़ी शामिल थी या वालिदैन की तरफ से ये? टोटल उनकी तरफ उनकी पसंद की
असल
शादी
में
थी?
तो खुद वालदैन की पसंद है, लेकिन उन लोगों ने खुद मेरी रिजायत मालूम की, और चूंकि मैंने भी मसलन अक्स वगैरह देखा था और मसलन भाई लोगों से तारीफ़ वगैरह सुनी थी, और मम्मी पापा ने कहा कि नहीं हम लोग देख चुके हैं अच्छा है, तो राज़ी थी मैं खुद में भी।
अच्छा अगर साहब ये आप बताना पसंद करेंगे यहाँ पर कि किस तरह शादी होनी चाहिए, कि अमूमन ये होता है हमारे कल्चर में खुसूसन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि बच्चों से उनकी राय नहीं पूछी जाती, उनके पसंद के बारे में नहीं पूछा जाता, कि जिसकी वजह से आइंदा बहुत सारे हम देखते हैं कि कोई असरात नज़र आते हैं कि वो दूसरे से खुश नहीं है, राज़ी नहीं है, इस चीज़ के बारे में आप क्या बताएंगे?
देखें, जब इस सिलसिले में हम यूं ही कहेंगे कि हमसे ये कहा गया है कि वलकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह में तुम्हारे लिए नमूने अमल पाया जाता है। तो जब हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुद आपने जो एक शादी की वो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी थी, और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी हमारे लिए नमूना है, तो हम ये समझ सकते हैं कि आप जब कोई भी रिश्ता आता था हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पहले तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह से पूछते थे, तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मना कर देती थी, लेकिन जब मौलाए कायनात का रिश्ता आता है तो आप खामोश रहती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुकूतुहा इकरारुहा, यानी इनका खामोश रहना बता रहा है कि ये खुद भी राज़ी हैं। तो ये नुक्ता हमें समझाता है कि नहीं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लड़की की मर्ज़ी पूछी जाए और लड़की की जहाँ चाहे शादी कर दें, बल्कि लड़की की मर्ज़ी पूछना, और मर्ज़ी पूछने का मतलब ये नहीं है कि बस, ज़रूरी नहीं कि इस ज़माने में भी यानी उसका चुप रहना ये उसका इकरार हो, यानी हालात को ये समझा जाएगा कि हालात से ये राज़ी हैं या नहीं रहे, या इनको पता भी है नहीं पता है,
खुद
चूँकि
आपने जब इनके लिए रिश्ता भेजा था कि आपकी अपनी मर्ज़ी थी, आपने कहा था कि पहले से इनके बारे में जानते थे या नहीं, खुद से ही ये सोचा कि भाई एक अच्छे घराने की तरफ देखते हैं कि उनकी बेटी हतमन अच्छी होंगी?
नहीं, मैं इनके बारे में कुछ भी शादी से पहले नहीं जानता था, लेकिन मैंने वालिदैन से और अपने बड़े भाई से यूँ कह दिया था कि मैं एक या तो तालिबे इल्म लड़की से शादी करना चाहता हूँ या ऐसे घर में शादी करना चाहता हूँ जहाँ रूहानी पाया जाता हो, यानी या तालिबे इल्म हो खुद या तालिबे इल्म की बेटी हो। बस मैंने उनको अपनी ये खसूसियत बताई थी, बाकी मैंने वालिदैन पर और अपने बड़े भाई पर छोड़ दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी खुदा ने, जब मैंने वालिदैन को सहारा बनाया तो खुदा ने भी मुझे ऐसी बीवी इनायत कर दी कि जिससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में खुश हूँ।
अच्छा, जिस तरह आप सोचते थे कि उस मेरी बीवी में ये क्वालिटी होनी चाहिए, इस तरह के सिफात होने चाहिए, वो सारे इनके अंदर मौजूद है?
अल्हम्दुलिल्लाह यानी जिन जिन को मैं सोचता था अक्सर उनमें हैं, और अगर कभी मुझे एहसास होता है कि उसमें नहीं है तो मैं इनको मुतवज्जे करता हूँ, वो पैदा कर लेती हैं, अपने अंदर कोशिश करती हैं कि उनको ईजाद करने, और अभी तक की ज़िंदगी इनकी रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक वो सारी सिफतें जो एक आध नहीं थी वो इन्होंने।
अच्छा शवाना, ऐसा होता है कि भाई जब इंसान बाहमी ज़िंदगी शुरू करता है तो ये तो नहीं होता ना कि भाई शादी से पहले इसको अच्छी तरीके से जानते, शादी के बाद इंसान जब ऐसा ऐसा जानना शुरू करता है और थोड़ी बहुत उस दौरान में थोड़ी बहुत गलती भी आपसे भी हो जाती है, इंसान देखे ख़ताओं का पुतला है, कभी आपसे भी थोड़ी गलती हो गई, कभी आपके शोहर से भी थोड़ी गलती हो गई, तो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, अफ़ो दरगुज़र से काम लेते हैं, या नहीं फिर उसी चीज़ को दोहराते रहना है कि तुमने फ़लान साल फ़लान मौके पर यह काम किया था, ये मुझे बहुत बुरा लगा, और घर को चलाने के लिए अफ़ो दरगुज़र या फिर हर चीज़ को याद रखें?
वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़ता इनसे होती नहीं है, ज़्यादातर कभी होती है तो मुझसे हो जाती है, लेकिन सबसे बेहतर खूबसूरती और इनकी मसलन सबसे अच्छी आदत यही है कि दरगुज़र करते हैं, और इन्हीं की आदत को पहले मुझ में ये नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने भी इसको अपनाया। मसलन अगर इनसे कोई ख़ता होती है तो यानी मुतवज्जे हतमन करते हैं आपस में एक दूसरे को कि आपने गलत काम किया है, लेकिन उसके बाद दरगुजर कर देते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आइंदा ऐसी गलती हमसे दोबारा सरज़द ना हो।
अच्छा, अफ़ो दरगुजर करने में एक उसके कहते हैं उसका एक अलग लुत्फ़ एक अलग मज़ा है और घर में खुशहाली का भी एक ज़रिया है हतमन। आप हमारे दूसरे जो जवान हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि भाई घरों में अफ़ो दरगुजर होने चाहिए, नहीं फिर लड़ाई झगड़ा उस तरह उसको दामा देना चाहिए?
मैं अपने भाइयों और बहनों से यही कहूंगा कि जहाँ तक सब्र और अफ़ो दरगुज़र की मंजिल है वो बेहतरीन मंजिल है, यानी सब्र के नतीजे में आदमी बहुत सी बुलंदियों को तय कर सकता है, अगर सब्र से काम नहीं लेगा तो बुलंदियों पर नहीं पहुँच सकता। इसलिए खुदावंद मुताल का जो ये चाहना है वो ये है, मैं मेरी समझ के मुताबिक वो ये चाहता है कि हम अपने इख्तियार से अपने को उसके सामने पेश करें, उसके नुमाइंदों के सामने पेश करें। अगर उसे जबर करना होता, सब्र हमारे अंदर इख्तियार ना देखना होता, तो वो एक लम्हे में हमको किसी भी बुरे काम पर خود وہ بھی ہم پر عذاب نازل کر دیتا اور ہم اچھے ہو جاتے. تو خداوند عالم بھی صبور ہے, خداوند عالم بھی صبر صبر کرتا ہے, لہذا ہمیں بھی اس کے, چونکہ خداوند عالم نے ہم کو پیدا کیا اور انسان خلیفۃ اللہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں اسی صفت کو خداوند عالم کی اپنا کر آدمی ترقی کی منزلیں آپس میں طے کر سکتا ہے اور قدم آگے بڑھا کر اس کا نمائندہ حقیقت میں بن سکتا ہے,
اور ایک ہمارا گھرانہ جو ہے وہ
خوشحال بن سکتا ہے. جو ہم نے یہی دیکھا ہے جنہوں نے صبر کیا ان کے گھرانے خوشحال ہوتے ہیں, لیکن جو صبر نہیں کر پاتے نہ ان کا گھر ہوتا ہے اور نہ گھر خوشحال ہوتا ہے.
اچھا, کوئی اور چیز آپ کی نظر میں کہ جو خوشحالی کو بڑھانے کے لیے کہ واقعی میں اس چیز کو اپنائیں تو خوشحالی ہے, وہ کیا کیا چیز ہے آپ دونوں کی نظر میں؟ دونوں سے سوال ہے میرا. کوئی ایسا کام کہ کہیں کہ مثلا جیسے قناعت, کہ اگر ہم قانے رہیں, خصوصاً خاتون اگر اپنے گھر میں قانے رہیں تو بہت سارے مسئلے سولو ہو سکتے ہیں. آپ کی نظر میں اگر کوئی اس طرح,
میری نظر میں یہ ہے کہ شوہر کو پوری کوششیں کرنی چاہیے کہ وہ جتنی بھی سہولیات اپنی بیوی بچوں کو دے سکتا ہے دے, جتنا ان کا حق ہے حق سے زیادہ دے, اس لیے کہ خداوند متعال کہتا ہے کہ جہاں تک ان کا حق ہے وہاں تک واجب ہے انجام دینا, اور جہاں حق سے اوپر چلیں جائیں وہاں مستحب ہے. یعنی دونوں حالتوں میں شوہر کے لیے ثواب ہی ثواب ہے, جتنی بھی ان کے لیے رفاہیات, جتنی بھی ان کے لیے
امکانات
فیسلٹیز, دنیا کی اچھی سے اچھی چیزیں ان کے لیے پیش کر سکتا ہے, شوہر کو یہ چاہیے کہ اپنے بچے, اپنی بیوی, اپنے والدین, اپنے عائزہ کے لیے بہتر سے بہتر دنیا کی چیزیں پیش کرے اس دنیا میں. خدا اند عالم نے بنائی اس لیے, اور بیوی کے سلسلے میں بہتر یہی بتائیں گی کیا کرنا چاہیے بیوی کو.
اچھی شوہرداری
اور اچھی شوہرداری, بچوں کی اچھی تربیت, بہرحال ہر چیز میں رضایت پروردگار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خدا ان کا میں راضی ہے یا نہیں ہے, سب کام انشاءاللہ کے بیس میں خدا انجام دے تو قبول ہو جائے.
اچھا, مجھے تو لگتا ہے کہ کبھی فرمائشوں کی نوبت تو آتی ہی نہیں ہوگی, جس طرح کہ آغا صاحب نے بات کی تمام جو مستحبات تک کی انہوں نے جب بات کی, تو کبھی ایسا لگا کہ کبھی مجھے نئی فرمائش فلاں جگہ پر فرمائش ہونی چاہیے؟
ویسے خدا کے شکر سے آج تک کوئی فرمائش میں نے نہیں کی ہے, کیونکہ میں ضرورت نہیں سمجھی. خدا کے شکر سے ہر چیز موجود ہے گھر میں, یعنی کہنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے, اس سے پہلے ہی آ جاتی ہے, شکر ہے خدا کا.
بہرحال میں ان کی نمائندگی میں کہوں گا کہ شوہر کو ادھر سے یہ کرنا چاہیے کہ جتنی چیزیں لا سکتا ہے دے, اور بیوی کو یہ کرنا چاہیے جتنی بھی شوہر پر کم
یہ دباؤ
ڈالیں اتنا ہی بہتر ہے. اس لیے کہ ہم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کبھی نہیں دیکھا, حتیٰ مولا کائنات مجبور ہو گئے کہ خود ہی کہیں یا اے فاطمہ کوئی تم اس سے خواہش کرو, تو آخر میں ایک خواہش جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کی تھی. تو ہم مولا کائنات کی زندگی کو اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو ایک خوش قسمت گھرانہ بنانے میں بہترین اس سے مدد لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوش قسمت بنا سکتے ہیں.
یہ آپ کی بیٹی خود اپنے آپ میں مگن ہے. بیٹا نام کیا آپ کا؟ کیا نام ہے؟ فاطمہ نام ہے, اتنا پیارا خوبصورت نام ہے. اچھا, آپ کا کوئی بھائی بہن بھی ہے؟ چھوٹا بھائی ہے. نام کیا ہے؟ محمد حسین نام ہے. اچھا جی, ایک شبانہ ایک مرتبہ پھر اجازت ہو تو تمہارے گھر چلیں اور دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کلپ. جی ہاں ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا, یقیناً آپ کو ہماری گفتگو, ہماری باتیں پسند آ رہی ہوں گی. دوبارہ آ کر اس گفتگو کو کنٹینیو رکھتے ہیں, چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو کلپ. बहुत ही अच्छा लगा बच्चों के साथ खेलते हुए आप लोगों को देखा। अच्छा बेटा आपके पास था, कहाँ है अभी, लेकर नहीं आई उसे?
अरे वो आज मरीज़ है, उसको बुखार हो रहा था इसलिए उसको वापस भेज दिया अपने मामू के पास
अच्छा
है।
अपने मामू के पास है। अच्छा क्या समझती हो कि ज़िंदगी में जो है ये बच्चे भी हैं, इतने अच्छे शोहर भी हैं, खुश नसीब समझती हो अपने आप को?
माशाल्लाह शुक्र है खुदा का कि खुदा ने हर चीज़ से अपनी नेमतों से और अपनी रहमतों से दोनों से नवाजा है, शुक्र है उस मोहब्बत
अच्छा आपकी नज़र में खुश नसीबी क्या है?
खुश नसीबी यह है कि आदमी अल्लाह पर ईमान रखे, उसके रसूल को माने और उनके अहले बैत से प्यार करे और हकीकी प्यार करे। और हकीकी प्यार यही है कि उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में अपनाए। यही हम अगर किसी से मोहब्बत और प्यार करते हैं तो तकाज़ा यही होता है सामने वाले का कि उसकी जो खुशियां हैं उसकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। इसीलिए इसी तरह खुशकिस्मती ये है कि हम जो अहले बैत हमसे चाहते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। और चूंकि अहले बैत अल्लाह की मर्ज़ी को चाहते हैं तो लिहाजा हम खुशकिस्मत उस वक्त होंगे कि जब अल्लाह की मर्ज़ी को मद्देनज़र रखें। एक टाइम को मुमकिन है कि हमें दौलत मिल रही हो, घर मिल रहा हो, सब कुछ मिल रहा हो, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ना मिल रही है तो ये सब बेकार है। और अगर अल्लाह की मर्ज़ी मिल रही है और दौलत, घर, ज़मीन, जायदाद, पैसा ये कुछ नहीं मिल रहा तो हमें अल्लाह की मर्ज़ी को यानी हासिल कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में इन दोनों में हमेशा टकराव ही होगा कि अल्लाह की मर्ज़ी उसी वक्त होगी कि जब हमारे पास माल दौलत ना हो। ऐसा नहीं है,
नहीं
मुमकिन है
बेशक
कभी ऐसा हो कि अल्लाह की मर्ज़ी हो और माल दौलत हमारे पास ना हो। ऐसा हो सकता है तो हमें अल्लाह की मर्ज़ी को रखना चाहिए। लेकिन चूंकि ये दुनिया अल्लाह ही ने पैदा की है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा अल्लाह की मर्ज़ी इस दुनिया के ना होने में हो।
जी बेशक
बल्कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस तरह ज़िंदगी गुजारो, इस तरह इस दुनिया में रहो कि जिस तरह तुम्हें हमेशा रहना है, और आखिरत के लिए इस तरह आमादा और तैयार रहो कि जैसे कल ही मर जाना है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ये हदीस हमें इस बात की तरफ रहनुमाई करती है कि दुनिया और अल्लाह की मर्ज़ी में हमेशा टकराव नहीं है। लेकिन
बेशक
अगर एक मरहला ऐसा आ जाए कि इस दुनिया में और अल्लाह की मर्ज़ी में टकराव आ जाए तो हमें अल्लाह की मर्ज़ी को अपनी खुशकिस्मत ज़िंदगी बनाने के लिए मुंतखब करना ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ आइम्मा ने किया है।
बेशक
तो खुशकिस्मती मेरी निगाह में सिर्फ मालो मनाल का ना होना नहीं है या होना नहीं है, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी में आ रहा है। अगर अल्लाह की मर्ज़ी और आइम्मा अलैहिस्सलाम की खुशी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी माल व मनाल के साथ है तो खुशकिस्मत हैं। लेकिन अगर माल व मनाल ना होते हुए भी उनकी मर्ज़ी है तब भी हम खुशकिस्मत हैं, लेकिन माल व मनाल है और उनकी मर्ज़ी नहीं है तो बदकिस्मत हैं, और माल व मनाल नहीं है फिर भी उनकी मर्ज़ी नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है तब भी हम खुशकिस्मत नहीं हैं। यानी
बेशक
असल पॉइंट हमारा यह है कि अल्लाह, रसूल और हमारे आइम्मा हमसे खुश हों। अगर माल के साथ वो खुश हो रहे हैं तो हम खुशकिस्मत हैं, और
बेशक
अगर बगैर माल के खुश तब हम खुशकिस्मत हैं, वरना खुशकिस्मत नहीं। अच्छा शबाना अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पास खुदा की हर नेमत मौजूद है, जिस तरह औलाद भी है, अच्छा शोहर भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हालात भी इतने अच्छे हैं। अगर बिलफर्ज़ तुम्हारे पास ये तमाम इम्कान ना होते लेकिन यही तालीम होती और इस तरह के इतने अच्छे शोहर तुम्हारे पास होते, इतने अच्छे बच्चे होते, क्या उस वक्त भी इतना खुश होते हैं कि अगर तुम्हारे पास बिलफर्ज़ कोई घर नहीं है, अपना कोई ना कोई घर है, इतनी अच्छी इनकम भी नहीं है, क्या उस वक्त भी खुश होती इसी आगा के साथ, इन्हीं बच्चों के साथ, इसी तालीम के साथ?
इंशाल्लाह की किस्मत में जो होता है इंसान को हतमन मिलता है, और ज़रूर ये चीज़ नहीं है कि इंसान के पास तमाम आसाइशें हों, तमाम आराम हो, तभी वो खुशकिस्मत हो और मसलन अच्छा हो सकता है।
कुछ अपने बारे में
लेकिन
बताओ, अगर उस वक्त जब तुम्हारे पास ये तमाम चीज़ें ना होती तो उस वक्त भी इतना खुश होती?
इंशाल्लाह के तवक्कुल करते हुए खुदा पे हर चीज़ पे राज़ी रहती कि शायद खुदा की मर्ज़ी सी में कि कुछ ना होते हुए भी बेहतरीन शोहर दिया और अपनी रहमत और नेमत दोनों से नवाजा, इसी में उसकी खुशी है और इसी में हमारी खुशी है,
अच्छा
खुशकिस्मती यही है।
मौलाना साहब मैं आपसे यूँ कहूँ कि हम आपकी तालीम को ले लें, आप जिस मकाम पर हैं उसको हम ले लें आपसे, और उसके बदले में आपको दुनिया की कोई आसाइश देना चाहें, ऐसा कोई मामला अगर आपसे करना चाहें हम आप दोनों से, तो ये आप ये मामला करने के लिए तैयार हैं?
देखें, आमाले शब जुमा में एक दुआ है, वो ये है कि अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन तंतसर बिही लदीनिक। और आमाले माह रमज़ान में भी इस ये दुआ ये फ़िक्रा आया है, जिसका मतलब सामईन के लिए यह है कि परवरदिगार हमें उन लोगों में से करार दे कि जो तेरे दीन की मदद कर सकें, जो तेरे दीन की मदद कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ मेरी ये तालीम एक हद तक दीन की मदद है, और जब हम दीन की मदद कर सकते हैं तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है। और मैं परवरदिगार से यही चाहूँगा कि अगर एक नौबत वो आ जाए कि बग़ैर इसके कि हम उसकी खिदमत ना कर सकें कि मालो मनाल ना हो, बेहतर परवरदिगार से दुआ ये है कि जैसा वो चाहता है हमको वैसा बना दे, वैसा बना दे चाहे जैसे ही। एक मौका अगर ज़िंदगी में, मैं ही समझता हूँ आएगा नहीं, इसलिए कि परवरदिगार अपने बंदों को भूलता नहीं, अपने
बेशक
बंदों को हमेशा याद रखता है, बंदे उसे याद रखते हैं तो वो उनसे पहले उन्हें याद, ऐसा नहीं कि हमारी याद का वो मोहताज हो,
बेशक
वो हमारी यादों में है चाहे वो हम उसकी यादों में हों या ना हो। मेरा ये यानी अंदर से एक विजदान ये कहता है मुझसे कि परवरदिगार हमें कभी भूलेगा नहीं। लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आ जाता है कि ज़िंदगी की कोई भी नेमत वो हमें ना दे, जैसा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहानन किया या हमारे लिए नमूना बनाने के लिए किया, ऐसा करता है, तो मैं अभी तक मेरा ये चाहना यही है कि इंशाअल्लाह उसकी मदद से मैं तमाम मसाइब पर सब्र करता रहूँगा, लेकिन इस नेमत को अपने हाथ से नहीं जाने दूँगा।
अच्छा, जिस तरह के आगाज़ से हमारी गुफ्तगू हो रही है उसके इस अंदाज़ से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होंगे और कभी इनको अचानक गुस्सा। लेकिन बहरहाल इंसान जो है घर में कभी होता है कि छोटी मोटी बात पर, या कभी ऐसा हो जाता है अचानक इंसान कुछ और सोच रहा होता है, अचानक कुछ और हो जाता है तो अचानक थोड़ा सा गुस्सा आ भी जाता है। तो उस वक्त क्या करती हैं? चुप हो जाती हैं, वहाँ से फरार कर जाती हैं उस मौके महल से, या इनके लिए पानी ले आती हैं? वैसे ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह इनको गुस्सा आता नहीं है, और कभी मुझे ही आ जाता है। लेकिन अगर इनको कभी आता है तो असल में मैं चुप रहती हूँ जब तक ये बोलते हैं, और अगर मुझको आता है तो ये चुप रहते हैं।
और बेहतर क्या है तुम्हारी नज़र
बेहतर
में
ये है कि जब भी ये गुस्सा होते हैं
किसी
फ़ौरन
को भी?
पानी लेके आती हूँ, थोड़ा फिर पूछती हूँ कि आखिर किस बात पे है, पहले बताइए तब जाके उसका हल निकालें, फिर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं आपस में मिलजुल के।
अच्छा, जब इन्हें गुस्सा आता है तो फिर आप क्या करते हैं?
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह
यह है कि अगर गुस्सा भी आता है तो उस बेहतर उसका रास्ता यही है, हदीस में भी ये बयान हुआ है कि जब सामने वाला गुस्सा हो तो दूसरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि सामने वाला अपनी बात कह दे फिर उसको जो हम बात गुस्से में कहना चाहते हैं। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि गुस्सा अगर कोई गुस्सा है और हम उसको कोई बात समझाना चाहते हैं तो उसकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि गुस्सा शैतान के एक वसाइल में से एक वसीला है, यानी गोया जब गुस्सा सवार है तो शैतान सवार है, और जब शैतान सवार होता है तो आदमी कुछ नहीं समझता, उसकी अक्ल बंद हो जाती है, उस जवाब नहीं दे पाता। तो बेहतर रास्ते ये है कि उस वक्त बिल्कुल इसी तरह के जैसे हमारे घर में आग लग जाए तो हम क्या करेंगे, ये तो नहीं कि अपने को भी आग लगा लेंगे,
सही बात है,
काम ये करेंगे कोई ऐसा काम करेंगे जिससे वो आग बुझ जाए।
बेशक।
अब चाहे कभी कपड़ा डालकर आग बुझानी होती, कभी पानी डालकर आग बुझा, वहाँ ये देखना है कि हमारे पास कौन सा वसीला मौजूद है कि जिसके ज़रिए से हम उस आग को बुझा सकते हैं। अब जैसे चाहे चुप हो जाएं, चाहे पानी ला दें, चाहे कोई इस तरह का अमल करें, बच्चों के साथ कोई ऐसा जुमला कह दें कि जिसका उसका गुस्सा काफूर बन जाए, तो कोई ऐसा यानी मौके की नज़ाकत देखते हुए उस वक्त हमें क्या करना है। मुमकिन हमेशा पानी ला, मुमकिन पानी लाने ही गुस्से का सबब बन जाए, बाज़ मौक़ों पर ऐसा हमने
सही
अपने
बात है,
दोस्तों के साथ देखा है, एक बीवी गई पानी लेकर आई, उन्होंने गिलास पर ही हाथ मार दिया, तो ये पानी लाना गुस्से
सही
का
बात,
सबब बन, तो उस वक्त मौके की नज़ाकत क्या है
नज़ाकत को।
कि ये जुमला कोई हंसी वाला जुमला कह के या बच्चे को सामने लाकर या पानी पिलाकर या बैठ कर, उस वक्त फैसला कर सकते हैं दोनों शोहर बीवी कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए कि पहले इनका ये गुस्सा ख़त्म हो जाए, उसके
सही बात
बाद
है
तो
जी
बात आगे बढ़ानी चाहिए।
जी आपसे बात करके, आपके नज़रिया जानकर, आपकी तरबियती नुकात की तरफ जिस तरह आपने इशारा किया, उन सबको सुनकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और शबाना आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप यहाँ पर आईं, वक्त निकाला, आपका इतना कीमती तरीन वक्त था, आपने थोड़ा सा वक्त हमें भी दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप लोगों से। ये सहारा आलमी नेटवर्क की जानिब से
इस प्रोग्राम खुशकिस्मत घराना की जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। आपकी बेटी से कहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और इस गिफ्ट को हमारी तरफ से आप कबूल फरमाएं। बेटा फातिमा आप इधर आएँ। शाबाश,
शुक्रिया।
कितनी प्यारी बच्ची हैं। ये लो बेटा गिफ्ट आपके लिए।
शुक्रिया।
ठीक है, चलो। जी हाँ नाज़रीन,
शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। यकीनन आपको ये तरबियती नुकात, ये इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आपको यकीनन पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह जिंदा रहे तो अल्लाह ने तौफीक दी, फिर मुलाकात होगी आपसे। जहाँ रहें खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।